एकत्र ज्ञानगोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञानगोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पहला मेजबान।
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं जो सदियों पुरानी होकर भी आज की लगती है। फ्रांसिस बेकिन के निबंध,
एसेज।
हाँ, एसेज।
हाँ,
ये सिर्फ निबंध नहीं बल्कि आप कह सकते हैं जीवन जीने के लिए व्यवहारिक सलाह का एक खजाना है।
बिल्कुल, और यही बात इसे आज इतना दिलचस्प बनाती है ना? मतलब सोचिए, 400 साल पहले लिखी बातें,
हाँ,
इंसान का स्वभाव, सत्ता का खेल, दोस्ती की अहमियत, महत्वाकांक्षा, पढ़ाई का असली मतलब, ये सब आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं।
सही।
हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी मुश्किलें नहीं हैं, लेकिन बेकन को पढ़कर लगता है शायद इंसान बदला ही नहीं।
सही कहा। ये निबंध हमें सिखाते हैं कि कैसे दुनिया की जटिलताओं को समझें और उनमें अपना रास्ता बनाएं, चाहे वो दफ्तर की राजनीति हो या निजी रिश्ते।
हाँ, तो आज की हमारी कोशिश यही रहेगी कि बेकन के सदियों पुराने ज्ञान को आज के संदर्भ में समझें और देखें कि यह हमारे फैसले लेने और जिंदगी को शायद बेहतर बनाने में कैसे मददगार हो सकता है।
हाँ, और हम इसे भारी भरकम फलसफा नहीं बल्कि एक दिलचस्प बातचीत की तरह रखेंगे।
तो फिर शुरुआत करते हैं उस शख्स से जिसने ये सब लिखा, फ्रांसिस बेकन, 1561-1626। ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक दार्शनिक, वैज्ञानिक या राजनेता?
कमाल की बात यह कि वो ये सब थे। इंग्लैंड के एक बेहद प्रभावशाली विचारक, राजनेता, वकील, वक्ता और लेखक भी।
अच्छा,
सोचिए, वो इंग्लैंड के अटॉर्नी जनरल और लॉर्ड चांसलर जैसे, मतलब सबसे ऊंचे पदों पर रहे।
हाँ, ये तो बहुत बड़े पद थे।
और हाँ, विज्ञान की दुनिया में उन्हें अनुभववाद का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म। उनकी किताब है नोवम ऑर्गेनम। उसने वैज्ञानिक सोच, मतलब साइंटिफिक मेथड को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल निभाया।
लेकिन उनकी कहानी सिर्फ अकादमिक या राजनीतिक उपलब्धियों तक ही सीमित नहीं है। जैसा आपने कहा, उनके जीवन में एक गजब का विरोधाभास भी था।
हाँ, वो दिलचस्प है।
एक तरफ वो ज्ञान और सत्य की खोज में लगे रहते थे, तो दूसरी तरफ वो रानी एलिजाबेथ प्रथम और राजा जेम्स प्रथम के शाही दरबार की उठापटक और साजिशों के बीच एक महत्वाकांक्षी राजनेता भी थे।
बिल्कुल, सत्ता के शिखर पर पहुंचे भी लेकिन फिर भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे और उनका पतन भी हुआ।
और शायद यही चीज उनके लेखन को इतना अनोखा बनाती है।
हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। उनके निबंध सिर्फ किसी लाइब्रेरी में बैठकर सोची गई बातें नहीं हैं। उनमें जिंदगी के उतार चढ़ाव, सत्ता के गलियारों का अनुभव और इंसानी फितरत की गहरी समझ झलकती है। उन्होंने जैसे इंसानी व्यवहार को भी अपनी वैज्ञानिक नज़र से परखा, बिना किसी लाग लपेट के, एकदम यथार्थवादी ढंग से। उनका ज्ञान किताबी कम, तजुर्बे पर आधारित ज्यादा है।
सही। अब आते हैं किताब पर। इसका पूरा शीर्षक कुछ ऐसा है, एसेज और काउंसिल्स, सिविल एंड मॉरल।
हाँ, यानी नागरिक और नैतिक मामलों पर सलाह या परामर्श।
नाम से ही थोड़ा अंदाजा लग जाता है कि ये कोई हल्की फुल्की गपशप नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में उन लोगों के लिए एक गाइड की तरह है जो दुनिया को समझना चाहते हैं, खासकर वो लोग जो सार्वजनिक जीवन में हैं या ऊंचे पदों पर काम करते हैं। बेकन इसमें व्यवहारिक दुनियादारी की समझ वाली सलाह देते हैं।
तो ये किताब एक तरह से ये सवाल उठाती है कि एक सोचने समझने वाला इंसान इस जटिल दुनिया में सफलता, समझदारी और थोड़ी बहुत नैतिकता के साथ अपना रास्ता कैसे बना सकता है।
बिल्कुल, और बेकन का जवाब देने का तरीका भी बड़ा सीधा खरा है। वो ये नहीं बताते कि दुनिया कैसी होनी चाहिए बल्कि ये दिखाते हैं कि दुनिया असल में कैसी है।
हाँ, ये बात ध्यान देने वाली है।
उनकी बातें आदर्शवादी कम है और ज्यादातर विश्लेषणात्मक, कभी कभी तो थोड़ी चुभने वाली सच्चाई जैसी लगती हैं, जैसे कोई वैज्ञानिक किसी चीज का ठंडा तथ्यात्मक विश्लेषण कर रहा हो।
और किताब की बनावट भी अलग है। इसमें कितने, 58 निबंध हैं।
हाँ, 58 छोटे छोटे स्वतंत्र निबंध हैं। 1625 के अंतिम संस्करण में आप कोई भी निबंध उठाकर पढ़ सकते हैं, किसी भी क्रम में।
अच्छा,
ऐसा लगता है जैसे आप किसी बहुत अनुभवी और बुद्धिमान सलाहकार के साथ बैठे हैं और वो जीवन के अलग अलग पहलुओं पर अपनी राय दे रहा है।
और विषय भी बहुत अलग अलग है।
हाँ, बहुत। सच, मौत, प्यार, दोस्ती, शादी, सत्ता, महत्वाकांक्षा, पढ़ाई, यहाँ तक कि चालाकी भी।
हाँ, विषयों की रेंज तो बहुत बड़ी है। कुछ तो गहरे दार्शनिक सवाल हैं, जैसे सत्य क्या है या मौत का डर क्यों है।
बिल्कुल, कुछ निजी जिंदगी से जुड़े हैं, प्यार, दोस्ती, शादीशुदा जिंदगी बनाम अकेले रहना।
और फिर वो बातें हैं जो समाज और सत्ता से जुड़ी हैं, ऊंचे पद पर होने का मतलब क्या है, बातचीत कैसे करें, कब खुलकर बोलें और कब शायद चुप रहें?
तो क्योंकि 58 निबंधों पर एक एक करके बात करना तो थोड़ा मुश्किल है, हमने सोचा कि कुछ खास विषयों से जुड़े निबंधों को चुनकर उन पर गहराई से बात करें।
हाँ, ये सही रहेगा, इससे बेकन की सोच की एक झलक मिल जाएगी।
मूर्त विचारों वाले निबंधों से
जरूर। पहला लेते हैं सत्य पर, ऑफ ट्रूथ। इसकी शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प है। वो रोमन गवर्नर पोंटियस पिलातुस।
हाँ, मजाकिया पिलातुस।
वो मजाक में पूछता है सत्य क्या है और जवाब सुनने के लिए रुकता भी नहीं। बेकन कहते हैं कि लोग अक्सर सच से ज्यादा आरामदायक झूठ पसंद करते हैं।
हाँ, जैसे सोने में थोड़ी मिलावट उसे गढ़ने में आसान बना देती है, वैसे ही जिंदगी में थोड़े झूठ शायद उसे आसान बना देते हैं, ऐसा वो कहते हैं।
लेकिन फिर वो जोर देते हैं कि सत्य की खोज ही सबसे ऊंची चीज है। ये निबंध सच जानने की हमारी इच्छा और झूठ के आराम के बीच के तनाव को दिखाता है।
बिल्कुल। फिर है मृत्यु पर, ऑफ डेथ। इसमें बेकन मौत के डर को कम करने की कोशिश करते हैं। उनका कहना है कि हम मौत से उतना नहीं डरते
जितना उसके दिखावे से।
हाँ, जितना उसके दिखावे या उसके बारे में बनाई गई कहानियों से डरते हैं। जैसे बच्चे अंधेरे से डरते हैं। वो ये भी कहते हैं कि प्यार, इज्जत या बदला लेने जैसे दूसरे मजबूत जज्बे मौत के डर पर हावी हो सकते हैं।
अच्छा,
मौत तो बस प्रकृति का एक कर्ज है जिसे चुकाना ही है, इसे शांति से स्वीकार करना चाहिए। कितना व्यवहारिक नजरिया है ना?
बिल्कुल। और इसी तरह विपत्ति पर, ऑफ एडवर्सिटी, ये निबंध मुश्किलों में छिपी अच्छाई की बात करता है।
हाँ, ये थोड़ा अलग है।
बेकन कहते हैं कि खुशहाली शायद पुराने जमाने का आशीर्वाद हो, लेकिन मुसीबतें नए जमाने का।
उनका मतलब है कि समृद्धि में तो सब अच्छा लगता है, लेकिन असली हिम्मत और गुण तो मुश्किल वक्त में ही सामने आते हैं।
दुख असल में महान बनने का एक मौका हो सकता है।
हाँ, कुछ ऐसा ही। ये थोड़ा चौंकाने वाला विचार है, क्योंकि हम अक्सर मुश्किलों से बचते हैं।
सही कहा।
और प्रतिशोध पर, ऑफ रिवेंज, इसमें वो बदला लेने को एक तरह का जंगली इंसाफ कहते हैं।
वाइल्ड जस्टिस।
हाँ, उनका मानना है कि कानून इसीलिए बने हैं ताकि लोग खुद बदला ना लें। बदला लेना कानून को तोड़ना है, और सबसे बड़ी बात, दुश्मन को माफ कर देना कहीं ज्यादा बड़ी बात है।
हाँ, वो लाइन है ना, बदला लेने में इंसान दुश्मन के बराबर हो जाता है, माफ करने में उससे ऊपर उठ जाता है।
बिल्कुल, ये आज के जमाने में भी कितनी बड़ी सीख है।
ये तो हुई जिंदगी के बड़े सवालों की बातें। अब थोड़ा निजी रिश्तों की तरफ आते हैं। बेकन की यहाँ भी राय बड़ी दिलचस्प और कभी कभी तो हैरान करने वाली है।
हाँ, है तो, जैसे विवाह और अविवाहित जीवन पर, ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ। इसकी शुरुआत ही उस मशहूर लाइन से होती है, जिसके पास पत्नी और बच्चे हैं उसने अपनी किस्मत को गिरवी रख दिया है।
हॉस्टेजेस टू फॉर्चून।
हाँ, बेकन का मानना था कि शादीशुदा लोग बड़े जोखिम या बड़ी महत्वाकांक्षाएं, चाहे अच्छी हो या बुरी, कम पाल पाते हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। को समाज की भलाई या अपनी विरासत बनाने में ज्यादा आजादी से लगा सकते हैं। ये बड़ा ही नपातुला व्यवहारिक विश्लेषण है व्यक्तिगत खुशी बनाम सामाजिक उपयोगिता का।
और प्रेम पर, ऑफ लव, ये निबंध तो आज के जमाने के हिसाब से काफी ठंडा लगता है।
हाँ, थोड़ा तो है। बेकन रोमांटिक प्यार को एक खतरनाक, बेवकूफी भरा जुनून मानते हैं। वो कहते हैं कि प्यार नाटकों और कहानियों में ज्यादा चलता है, असल जिंदगी में कम। ये जरूरी कामों से ध्यान भटकाता है।
वो ये भी इशारा करते हैं कि इतिहास के महान लोग शायद ही कभी इश्क में पड़े हों।
हाँ, उनके लिए ये दोस्ती वाले प्यार से बिल्कुल अलग है, जिसकी वो बहुत तारीफ करते हैं। प्यार को तो वो सीधे सीधे मूर्खता का बच्चा कह देते हैं।
थोड़ी सख्त टिप्पणी है, नहीं?
हाँ, सख्त तो है, लेकिन जब वो मित्रता पर लिखते हैं, ऑफ फ्रेंडशिप, तो उनका अंदाज बिल्कुल बदल जाता है।
हाँ, ये मैंने भी महसूस किया।
ये उनके सबसे गर्मजोशी भरे निबंधों में से एक है। वो सच्ची दोस्ती को जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना मानते हैं। इसके तीन मुख्य फायदे बताते हैं। पहला,
दिल का बोझ हल्का करना, अपनी खुशियां और गम बांट पाना।
हाँ, बिल्कुल, डिस्चार्ज ऑफ द फुलनेस ऑफ द हार्ट।
दूसरा, सही फैसले लेने में मदद। एक सच्चा दोस्त आपको ईमानदारी से सलाह देता है, आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता।
ऑब्जेक्टिव सलाह।
बिल्कुल।
और तीसरा, हर काम में मदद और साथ, एड इन ऑल एक्शंस। ये दोस्ती के जज्बाती और दिमागी फायदों का बहुत अच्छा विश्लेषण है।
चलिए, अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, सार्वजनिक जीवन, सत्ता और समाज। यहाँ बेकन का अपना अनुभव साफ झलकता है। उच्च पद पर, ऑफ ग्रेट प्लेस, ये निबंध तो जैसे सीधे उनके राजनीतिक करियर से निकला है।
हाँ, लगता तो है।
वो लिखते हैं, ऊंचे पद पर बैठे लोग तीन तरह के गुलाम होते हैं, राजा या राज्य के गुलाम, शोहरत के गुलाम और काम के गुलाम। क्या लाइन है।
बिल्कुल, उनका कहना है कि सत्ता मिलने से आजादी नहीं मिलती बल्कि छिन जाती है। ऊंचे पद तक पहुंचना मेहनत का काम, उस पर बने रहना मुश्किल और वहां से गिरना अक्सर दर्दनाक होता है।
उनकी सलाह क्या है फिर?
सलाह है, ताकत का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करो, भ्रष्टाचार से बचो और सही समय पर इज्जत से रिटायर हो जाओ।
फिर एक बहुत ही दिलचस्प निबंध है दिखावा और छिपाव पर, ऑफ सिमुलेशन एंड डिससिमुलेशन। ये सार्वजनिक जीवन में बातचीत और अपनी छवि बनाने की कला पर है।
हाँ, ये बहुत सूक्ष्म है। बेकन तीन चीजों में फर्क करते हैं, गोपनीयता यानी सीक्रेसी, छिपाओ यानी डिससिमुलेशन, अपनी असली मंशा छुपाना, और दिखावा सिमुलेशन, झूठी मंशा जाहिर करना।
अच्छा, ये तीन अलग चीजें हैं।
हाँ, उनका मानना है कि राजनीति या सार्वजनिक जीवन में थोड़ी गोपनीयता और थोड़ा छिपाव जरूरी है। जो इंसान बिल्कुल खुली किताब होता है वो कमजोर पड़ सकता है।
तो नुस्खा क्या है?
उनका नुस्खा है, भरोसा बनाने के लिए खुलकर बात करो, लेकिन अपनी सुरक्षा या लक्ष्य पाने के लिए जरूरत पड़ने पर कुछ चीजें छुपाकर भी रखो।
कितना बारीक संतुलन है।
और आखिर में अध्ययन पर, ऑफ स्टडीज, ये शायद उनका सबसे मशहूर निबंध है।
हाँ, सबसे ज्यादा कोट किया जाने वाला।
इसकी शुरुआत होती है पढ़ाई के तीन मकसद से, खुशी के लिए, बातचीत में शोभा के लिए और काबिलियत के लिए, मतलब निजी सुकून, अच्छी तरह बात कर पाना और काम करने की योग्यता।
हाँ, फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नमेंट एंड फॉर एबिलिटी। लेकिन वो चेतावनी भी देते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ना आलस बन सकता है, सिर्फ दिखावे के लिए ज्ञान का इस्तेमाल करना ठीक नहीं और सिर्फ किताबी कीड़ा बन जाना भी सही नहीं।
और वो अमर पंक्ति, कुछ किताबें सिर्फ चखने के लिए होती हैं, कुछ निगलने के लिए और कुछ चबाकर पचाने के लिए।
क्या बात है।
वो कहते हैं कि पढ़ना दिमाग की कमजोरियों को वैसे ही ठीक करता है जैसे वर्जिश शरीर की बीमारियों को।
ये व्यवहारिक पढ़ाई की जबरदस्त वकालत है। इन सभी निबंधों को देखें तो कुछ खास बातें या संदेश बार बार उभर कर आते हैं।
हाँ बिल्कुल, सबसे पहली चीज जो मुझे दिखती है वो है व्यावहारिकता और दुनियादारी की समझ, प्रैग्मेटिज्म एंड वर्ल्डली विजडम।
हाँ, ये तो है।
बेकन हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि असल दुनिया में क्या काम करता है बजाय इसके कि क्या आदर्श है। उनकी सलाह आपको इस दुनिया में टिके रहने और सफल होने में मदद करती है।
आजकल भी देखें, करियर चुनते वक्त या लोगों से मिलते जुलते वक्त हम यही सोचते हैं ना कि क्या प्रैक्टिकल है।
बिल्कुल। दूसरा बड़ा संदेश है ज्ञान की तलाश और उसका सही इस्तेमाल, पर्स्यूट एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। बेकन मानते थे कि सही जानकारी ही सही काम करने की बुनियाद है।
सिर्फ पढ़ना काफी नहीं।
हाँ, उसे समझना, चबाना और पचाना जरूरी है ताकि उसे जिंदगी में इस्तेमाल किया जा सके। आज के इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के जमाने में ये बात कितनी सही लगती है।
हाँ।
हमें चुनना पड़ता है कि क्या पढ़ें और उसे कैसे इस्तेमाल करें।
चाहे वो नौकरी के लिए कोई नया स्किल सीखना हो या कुछ खरीदने से पहले रिसर्च करना।
सही। तीसरा, बेकन इंसान की फितरत को बिना किसी लाग लपेट के देखते हैं, क्लियर आइड व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। वो स्वार्थ, जलन, महत्वाकांक्षा जैसी चीजों को बड़ी बेबाकी से बयान करते हैं।
वो ये नहीं कहते कि ये बुरी हैं।
नहीं, बल्कि ये कि ये जिंदगी की सच्चाइयां हैं, इन्हें समझो और मैनेज करो। आज भी हम अपने आसपास या अपने अंदर इन भावनाओं को देखते हैं। उन्हें समझना हमें दूसरों को बेहतर समझने और खुद को काबू में रखने में मदद कर सकता है।
एक और दिलचस्प बात है, सच, धोखा और दिखावे के बीच का रिश्ता, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन ट्रूथ, डिसेप्शन, अपीयरेंस।
हाँ, ये थोड़ा जटिल है।
बेकन मानते हैं कि सच सबसे अच्छा है, पर जिंदगी और खासकर राजनीति में कभी कभी थोड़ा छिपाव जरूरी हो जाता है। आप हमेशा पूरी तरह पारदर्शी नहीं रह सकते, दिखावा भी मायने रखता है। ये थोड़ा पेचीदा है लेकिन शायद ज्यादा यथार्थवादी भी।
अपनी बात शेयर करनी चाहिए, ये वही संतुलन है।
बिल्कुल। और आखिर में संयम और संतुलन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडरेशन।
हाँ,
चाहे पढ़ाई हो, गुस्सा हो या महत्वाकांक्षा, बेकन हर चीज में अति से बचने की सलाह देते हैं। एक तरह से वो बीच का रास्ता, अ गोल्डन मीन, अपनाने की बात करते हैं।
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में वर्क लाइफ बैलेंस या अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने की बात कहीं ना कहीं इसी संतुलन की तरफ इशारा करती है।
सही।
वाकई इन निबंधों में ऐसी पंक्तियां हैं जो दिमाग में बैठ जाती हैं।
हाँ, कुछ यादगार विचारों को फिर से याद करते हैं।
जैसे वो पढ़ाई वाली बात, कुछ किताबें चखने के लिए होती हैं, कुछ निगलने के लिए और कुछ चबाने और पचाने के लिए।
इसका मतलब है कि हर किताब को एक ही तरह नहीं पढ़ना चाहिए, कुछ से बस जानकारी लेनी है, कुछ को समझना है और कुछ को तो जिंदगी में उतार लेना है, ज्ञान पाने का एक सोचा समझा तरीका।
या फिर शादी पर वो थोड़ी चुभने वाली टिप्पणी, जिसके पास पत्नी और बच्चे हैं उसने भाग्य को बंधक बना दिया है।
हाँ, ये भावनाओं से ज्यादा इस बात पे जोर देती है कि पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को सीमित कर सकती हैं। ये एक ठंडा पर शायद सच्चा विश्लेषण है।
और सत्ता के बारे में, उच्च पद पर बैठे लोग 3 बार सेवक होते हैं। ये याद दिलाता है कि ताकत के साथ सिर्फ अधिकार नहीं, भारी जिम्मेदारियां भी आती हैं।
ये आज की नेताओं के लिए भी एक चेतावनी है।
बिल्कुल। और बदला लेने पर, बदला एक प्रकार का जंगली न्याय है, कानून को उतना ही इसे उखाड़ फेंकना चाहिए। ये मानता है कि बदला लेने की इच्छा स्वाभाविक है, पर सभी समाज में कानून का राज होना चाहिए।
अब सबसे बड़ा सवाल, ये 400 साल पुरानी बातें आज हमारी जिंदगी में कैसे काम आ सकती हैं?
हाँ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है?
दफ्तर या काम की जगह पर सोचें। बेकन की सलाह हमें ऑफिस पॉलिटिक्स को समझने में मदद कर सकती है। कौन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, कैसे अपनी बात रखनी है, मतलब रणनीतिक रूप से सोचना।
बिल्कुल। और अगर कोई लीडरशिप रोल में है तो उच्च पद पर निबंध आपको सत्ता की जिम्मेदारियों और दबावों की याद दिलाता है।
हाँ।
साथ ही अध्ययन पर निबंध हमें सिखाता है कि आज की सूचना के सैलाब में कैसे सही जानकारी चुनें, उसे गहराई से समझें और फिर सोच समझकर फैसले लें, सिर्फ गट फीलिंग पर नहीं बल्कि तथ्यों के आधार पर।
निजी जिंदगी में भी ये बातें लागू होती हैं। मित्रता पर निबंध हमें याद दिलाता है कि कैसे दोस्त चुनें, वो जो सिर्फ हाँ में हाँ न मिलाएं बल्कि हमें आईना भी दिखाएं और मुश्किल में साथ दें।
सही। और जिंदगी के बड़े फैसले लेते वक्त, शादी, करियर, घर, बेकन का तरीका हमें सिखाता है कि हर चीज के नफे नुकसान को ठंडे दिमाग से तौलें। अपनी असली प्राथमिकताएं क्या हैं? सुरक्षा, आजादी, महत्वाकांक्षा, इस पर ईमानदारी से सोचें।
चित्र बनाने और अपनी हिम्मत दिखाने का मौका समझें।
रेजिलियंस जिसे कहते हैं।
बिल्कुल।
दिमागी तौर पर भी फायदा है। बेकन के विश्लेषण पढ़कर हम खुद को बेहतर समझ सकते हैं। हमारी अपनी जलन, महत्वाकांक्षा, डर, प्यार, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। और उनकी तरह चीजों को अलग अलग एंगल से देखने की आदत डालें तो क्रिटिकल थिंकिंग मजबूत होती है, जिससे हम अपनी समस्याओं को बेहतर ढंग से सुलझा सकते हैं।
तो कुल मिलाकर बेकन के निबंधों से जो सबसे बड़ी सीख मुझे मिलती है वो ये है कि एक सार्थक और सफल जिंदगी के लिए गहरी समझ, इंसानी फितरत की पैनी नजर और सोच समझ कर खुद को संभालने की कला जरूरी है।
हाँ।
जिंदगी को ऐसे देखना जैसे वो भी अध्ययन करने लायक एक विषय हो। उनकी ये व्यवहारिक सच्चाई और इंसानी मनोविज्ञान की समझ आज भी मतलब हैरान करती है।
मेरे लिए जो बात सबसे ज्यादा घर कर गई वो है सच्ची दोस्ती की अहमियत पर उनका जोर और पढ़ाई का असली मतलब। ऐसा लगता है जैसे ये निबंध हमें दुनिया को समझने के लिए कुछ मानसिक औजार, आप कह सकती हैं मेंटल मॉडल्स देते हैं।
हाँ, एक तरह का बौद्धिक कवच।
बिल्कुल। ये व्यावहारिक दर्शन का एक बेहतरीन नमूना है, भावनाओं से परे लेकिन फिर भी गहरा मानवीय, जो भी अपनी जिंदगी को ज्यादा सोचा समझा, असरदार और परखा हुआ बनाना चाहता है, उसके लिए ये किताब एक जरूरी साथी जैसी है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।